भाग 11 सरकार के अंग व्यवस्थापिका विषय प्रवेश। सरकार के तीन अंग हैं। सरकार राज्य का आवश्यक मूल तत्व है। वह राज्य का कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित व्यक्त तथा क्रियावंत करती है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए उसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। राज्य एक सूक्ष्म धारणा है, परंतु सरकार एक वास्तविक तथ्य है। सरकार द्वारा ही राज्य के लक्ष्य का निर्धारण तथा क्रियान्वयन होता है। यह राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियावंत करने तथा जो उनका पालन ना करे उसे उचित दंड दिलाने का उत्तरदायित्व होता है। इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए और न्यायपालिका को तीन भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम कर्मशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। लेकिन डिगवी आदि विद्वानों ने सरकार के केवल दो अंग मानते हैं, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका। विलोबी आदि विद्वानों ने तो सरकार के पांच अंगों का उल्लेख किया है, निर्वाचक गण, शासन प्रबंधकर्ता, व्यवस्थापिका, चौथा कार्यपालिका, पांचवा न्यायपालिका, छठवा शासन विभाग। लेकिन आज सरकार के अंगों के ये वर्गीकरण मान्य नहीं है। सरकार के तीन अंगों वाला सिद्धांत ही मान्य है, जिसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग हैं। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका है। यही विभाग कानून का निर्माण करती है, जिसके अनुसार कार्यकारिणी शासन करती है तथा व्यवस्थापिका न्याय का कार्य करती है। व्यवस्थापिका का सरकार के संगठन में सर्वोच्च स्थान है। प्रजातांत्रिक राज्यों में यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकमत का दर्पण होती है। व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्य प्रत्येक देश में एक जैसे नहीं हैं। निरंकुश राजतंत्र की सरकार में वह केवल कार्यपालिका की परामर्शदर्ता संस्था मात्र है। नौकरशाही रूप की सरकार के अंतर्गत वह पूर्णतः प्रबंधकारी के अधीन होती है। अधिनायक तंत्र में तो उसका अस्तित्व केवल कागज पर रहता है। अध्यक्षात्मक शासन में अन्य अंगों के समकक्ष, लेकिन संसदीय शासन में उसका स्थान सर्वोच्च है। इस प्रकार शासन स्वरूप के अनुसार व्यवस्थापिका का महत्व तथा उसके कृत्य निर्धारित होते हैं। फिर भी आधुनिक व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापन विभाग का प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना है। कानून में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, अतः यह उचित है कि कानून का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानमंडल में भेजती है और वे उसकी सामान्य इच्छाओं को कानून का रूप देते हैं। कानून निर्माण के सिलसिले में कानून का प्रारूप या मसविदा तैयार करना, वाद विवाद करते हुए इस पर साधारणतः तीन वाचन करना, संशोधन करना आदि कार्यों का संपादन करता है। किंतु वर्तमान युग की गतिविधियों से परिचय हो जाने के बाद यह स्वीकार करना कुछ कठिन हो गया है कि केवल व्यवस्थापिका ही कानून का निर्माण करती है। कानूनों का वास्तविक और पूर्ण रूप कार्यकारिणी और सलाहकारी समितियों द्वारा ही निर्मित होता है। जहां संसदीय प्रणाली है, वहां कानून बनाने के कार्य में व्यवस्थापिका की अपेक्षा कार्यकारिणी का ही अधिक हाथ रहता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में यद्यपि कानून बनाने के कार्य में कार्यकारिणी का प्रत्यक्ष हाथ नहीं होता, फिर भी वह व्यवस्थापिका को बहुत हद तक प्रभावित करती है। दूसरा, विमर्श सार्थक कार्य विधि निर्माण में व्यवस्थापिका को विचार विमर्श करना पड़ता है। वस्तुतः विचार विमर्श करने का कार्य कानून निर्माण के कार्य से अलग नहीं, लेकिन कभी कभी व्यवस्थापिका बहुत से विषयों पर विचार विमर्श करती है पर उन्हें कानून का रूप नहीं देती। अतः कुछ विद्वान विचार विमर्श करने के कार्य को कानून निर्माण के काम से पृथक कर देते हैं। व्यवस्थापिका में जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द पार्लियामेंट व्यवस्थापिका या संसद फ्रेंच भाषा में पालेमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद तथा विचार विमर्श करने वाली एक सभा। अर्थात व्यवस्थापिका एक ऐसा सभा स्थल है जहां राज्य की समस्त नीतियों, लक्ष्यों, विषयों आदि पर वाद विवाद तथा विचार विमर्श होता है। इसमें शासन संबंधी समस्त बातों पर विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका का गठन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें अनेक स्वार्थों, विभिन्न दृष्टिकोणों एवं समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही कानून निर्माण के सिलसिले में व्यवस्थापिका एक विशेष प्रकार की विधायिका कार्य पद्धति का अनुसरण करती है। अपने विमर्शात्मक कार्यों के सहारे व्यवस्थापिका अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए देश के सभी हितों का संबंध उपस्थित करती है तथा परिपक्व नीतियों एवं उपयोगी विधियों का निर्माण करती है। तीसरा, आर्थिक कृत्य या वित्तीय कृत्य। प्रजातंत्र में देश के राजस्व पर जनता का ही एकमात्र अधिकार होना चाहिए। अतः जनता के रूप में व्यवस्थापिका का यह महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि वह राष्ट्रीय अर्थ का नियंत्रण और नियमन करे। प्रजातांत्रिक देशों में सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर व्यवस्थापिका का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका वित्तीय वर्ष के आरंभ से उस वर्ष की अनुमानित सरकार आय व्यय का ब्यौरा स्वीकृत करती है। आय व्यय का ब्यौरा वाद विवाद करते हुए उस पर साधारणतः तीन वाचन करना, संशोधन करना आदि कार्यों का संपादन वह करती है। वह किसी भी प्रकार का नया कर लगाती है या उसे घटाती बढ़ाती है। बिना इसकी अनुमति के ना तो कोई नया कर लगाया जा सकता है और ना कोई राशि ही सरकार के किसी मद में खर्च की जा सकती है। इस प्रकार वित्तीय नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता है। अतः इसका स्थान बड़ा शक्तिशाली हो जाता है और इसकी सर्वोच्चता को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। चौथा, प्रशासन संबंधी कार्य वेजहॉट का कथन है कि व्यवस्थापिका का गठन नाम मात्र के लिए विधि निर्माण करना है। उसका प्रमुख कार्य कार्यपालिका का निर्माण तथा नियंत्रण करना है। जिन देशों में संसदीय प्रणाली की सरकार है वहां की कार्यकारिणी अपने सभी कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यवस्थापिका उसके ऊपर प्रत्यक्ष और तत्कालिक नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के कार्यों पर पूरक प्रश्न, कामरोको प्रस्ताव, निंदनात्मक प्रस्ताव, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वाद विवाद, अविश्वास के प्रस्ताव इत्यादि के द्वारा नियंत्रण रखती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पृथक और समकक्ष माना जाता है तथा शक्ति का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया रहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी प्रशासकीय नियुक्तियां या अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं सबको कार्य रूप में परिणित होने के पूर्व सीनेट द्वारा अनुसमर्थित होना पड़ता है। इस प्रकार आधुनिक युग की प्रजातांत्रिक प्रणालियों द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रोफेसर लॉस्की के शब्दों में व्यवस्थापिका का वास्तविक कार्य यह देखना है कि कार्यपालिका अपना कार्य ठीक ढंग से करती है या नहीं। पांचवा, न्यायिक कार्य। बहुत से देशों में व्यवस्थापिका कतिपय न्यायिक कार्यों का भी संपादन करती है। उच्च सदन को कई देशों में अनेक कार्य सौंपे गए हैं। उदाहरण स्वरूप अमेरिका की सीनेट वहां के राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के मुकदमे में निर्णय देने के लिए
न्याय के रूप में न्यायालय का कार्य करती है। भारत में भी संसद का कोई एक सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है और दूसरा सदन उस दोषारोपण की छानबीन एक न्यायालय की भांति कर सकती है। ब्रिटेन में संसद के उच्च सदन लॉर्ड सभा को और भी अधिक न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। वह देश का अपील संबंधी अंतिम उच्चतम न्यायालय है। इस प्रकार कई देशों में व्यवस्थापिका द्वारा अनेक न्यायिक कार्य भी संपादित होते हैं। छवां, अन्य कार्य। व्यवस्थापिका के अन्य कार्यों में सबसे प्रथम स्थान निर्वाचन संबंधी कार्यों का है। अनेक देशों की व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य करती हैं। उदाहरणतः भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के तथा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। स्विट्जरलैंड में मंत्रिपरिषद, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति आदि का चुनाव वहां की पार्लियामेंट द्वारा होता है। कई देशों में संविधान संशोधन का कार्य वहां की व्यवस्थापिका ही करती है। जहां पर संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं माना जाता, वहां व्यवस्थापिका को साधारण कानून के साथ साथ संवैधानिक कानून या संविधान के निर्माण, संशोधन, परिवर्तन आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उदाहरणतः ब्रिटेन की संसद किसी प्रकार के संवैधानिक कानून का निर्माण या संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। भारत, अमेरिका आदि देशों में वह संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया का सहारा लेकर संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उपयुक्त कार्यों की छोटी सूची तक ही प्रक्रिया का आधुनिक व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज राज्य के कार्यों में वृद्धि के साथ साथ इस भाग के कार्य भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी इस स्थिति का एक विपरीत परिणाम निकल रहा है। आज राज्य के कार्यों में वृद्धि हो जाने और संसदीय पद्धति के विकसित हो जाने के और कानून बनाने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने जैसे महत्वपूर्ण काम व्यवस्थापिका की जगह कार्यपालिका द्वारा संपादित होने लगा है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण की केवल एक औपचारिक सभा रह गई है। कार्यकारिणी के अधिकारों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज कार्यकारिणी ही व्यवस्थापिका पर नियंत्रण करने लगी है। फिर भी व्यवस्थापिका जनमत की अभिव्यक्ति है। जनता की मांगों एवं आवश्यकताओं को प्रकाश में लाने, अनुचित दबाव के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने और एक प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण के लिए संवैधानिक तरीके से संगठित जनता के हाथ में एकमात्र उपयोगी साधन है। व्यवस्थापिका के संगठन। आधुनिक युग में प्रतिनिधि जनतंत्र के विकास के चलते संपूर्ण समाज के लिए कानून बनाने का कार्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से संगठित व्यवस्थापिका के जिम्मे सौंप दिया गया है। आज व्यवस्थापिका को संपूर्ण समाज का मस्तिष्क कहा जाता है। यह समस्त राष्ट्र की सामूहिक इच्छा को कानून का रूप देती है। कानूनों का उद्देश्य समाज के किसी वर्ग विशेष की संस्था पर निर्भर करता है जो इनका निर्माण करती है, अर्थात व्यवस्थापिका। अतः विवेकपूर्ण एवं कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करने के लिए व्यवस्थापिका के स्वरूप और संगठन पर विचार करना एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। व्यवस्थापिका के संगठन के संबंध में दो सिद्धांत पाए जाते हैं। जहां व्यवस्थापिका में एक सदन होता है, वहां की संगठन प्रणाली को एक सदनात्मक प्रणाली कहते हैं। लेकिन जहां व्यवस्थापिका का संगठन दो सदनों से होता है, उसे द्विसदनात्मक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका विधानमंडल के अंतर्गत एक सदनात्मक प्रणाली की धारणा 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में अत्यधिक लोकप्रिय रही। चूंकि लोकतंत्रात्मक शासन का विकास हो रहा था, इसलिए लोगों की यह धारणा प्रबल हो चली थी कि संप्रभुता सर्वसाधारण में निवास करती है और उसका प्रतिनिधित्व केवल एक ही सदन द्वारा हो सकता है, दो सदनों के द्वारा नहीं। सीएज का कथन है कि कानून लोगों की इच्छा का फल है। लोग एक ही समय में एक ही विषय पर दो भिन्न इच्छाएं नहीं कर सकते, इसलिए कानून निर्मात सभा जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है अनिवार्यतः एक ही होनी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार भी व्यवस्थापिका सभा में द्वितीय सदनों का अस्तित्व अनावश्यक है। उसका प्रमुख कथन यह था कि व्यवस्थापन विभाग में दो सदनों का रहना ठीक वैसे ही है जैसे किसी गाड़ी में दो और घोड़े जोत दिए जाएं और दोनों ओर के घोड़े अपनी तरफ गाड़ी को खींचें और वह किसी एक तरफ आगे नहीं बढ़ सके। फ्रांस में 1791 तथा 1748 और इंग्लैंड में 1651 में एक सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन ये प्रयोग सफल ना हुए। आज यूनान, इस्टोनिया और यूगोस्लाविया आदि यूरोपीय देशों में एक सदन के ही विधानमंडल हैं, लेकिन आज की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जहां व्यवस्थापिका के जिम्मे स्थायी तथा कल्याणकारी कानूनों के निर्माण का भार और सौंप दिया जाता है, वहां कानूनों की निर्माण प्रक्रिया में उत्तेजना, जल्दबाजी और अस्थिरता दूर करने के लिए व्यवस्थापिका में दो सदनों का अस्तित्व बड़ा ही महत्वपूर्ण माने जाने लगा है। द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था सर्वत्र अपनाई जाने लगी है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक प्रणाली ऐतिहासिक विकास तथा संयोग का परिणाम है। यह व्यवस्था ब्रिटिश संवैधानिक विकास की देन है। इंग्लैंड की संसद जो सबसे पहले प्राचीन संसद है, संयोग से द्विसदनात्मक हो गई है। अन्य प्रजातांत्रिक देशों में ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। पोलस्की के शब्दों में यह केवल ऐतिहासिक संयोग की बात है कि इंग्लैंड की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी और उसी का अनुसरण अन्य देशों ने किया। विलोबी ने कहा है कि यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं होते। आज सभी बड़े राजनीतिक प्रजातांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, एक सदन को उच्च तथा द्वितीय सदन और दूसरे सदन को निम्न तथा प्रथम सदन कहते हैं। निम्न सदन देश की सर्वसाधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसका निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। द्वितीय सदन सर्वसाधारण का नहीं अपितु कुछ विशेष वर्गों, स्वार्थों तथा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके संगठन का कोई सर्वमान्य निश्चित संवैधानिक आधार नहीं। भिन्न भिन्न देशों में इसके संगठन का स्वरूप भिन्न भिन्न है। उदाहरणतः इंग्लैंड की लॉर्ड सभा का आधार वंश परंपरा है। इटली, जापान और कनाडा में द्वितीय सदन के सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। भारतीय राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा मनोनीत होते हैं और अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा पोलैंड में द्वितीय सदन के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आरंभ में द्वितीय सदन की स्थापना कतिपय उच्च आदर्शों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इनकी स्थापना का उद्देश्य था देश के बुद्धिमान तथा विवेकशील व्यक्तियों को कानून निर्माण सभा में स्थान मिले जो जनता के प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य छोटे छोटे एवं उपेक्षित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करें तथा जनप्रतिनिधियों को आवेशमयी एवं उत्तेजनापूर्ण रफ्तार को रोककर आदेश रहित, तर्कपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी कानूनों के निर्माण में मार्ग प्रदर्शन करें। लेकिन कालांतर में इस सदन के प्रति लोगों के दिल में वह पुरानी श्रद्धा का भाव जाता रहा। आधुनिक युग में लोकतंत्रात्मक पद्धति के अत्यधिक विकास एवं जनता में राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव के चलते प्रथम सदन के समक्ष गौण स्थिति में पहुंच गया है। आज यह पूर्णतः शक्ति शून्य हो गया है तथा इसके अस्तित्व का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। अधिकांश देशों में यह सदन की छाया मात्र रह गया है, फिर भी इसकी कुछ उपयोगिता है जिसके कारण यह अभी भी लोकप्रिय है। द्विसदनात्मक पद्धति के गुण और एक सदनात्मक पद्धति के दोष। व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के पक्ष और विपक्ष में विद्वानों द्वारा विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ लेखक उपयोगी कानूनों के लिए सदन को ही पर्याप्त मानते हैं। सीएज का कहना है कि कानून लोगों की इच्छा का फल है। लोग एक ही वक्त एक विषय पर दो भिन्न इच्छाएं नहीं कर सकते, इसलिए कानून निर्माण सभा भी जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है अनिवार्यतः एक ही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वान का यह दृढ़ मत है कि व्यवस्थापिका में दो सदनों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। आधुनिक युग के प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्रात्मक पद्धति की रक्षा तथा राज्य के विभिन्न हितों और स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्थापिका के अंतर्गत दूसरा सदन अपरिहार्य माना जाएगा। सन हेनरी सेन की राय में द्वितीय सदन अवश्य होना चाहिए। दोनों पद्धतियों को लेकर राजनीतिक जगत में बड़ा विवाद है, इसलिए तथ्य का पता लगाने के लिए दोनों पद्धतियों के गुण और दोषों पर विचार करना आवश्यक है। एक के गुण दूसरे के दोष तथा दूसरे के गुण पहले के दोष हैं। पहला, द्विसदनात्मक पद्धति स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को रोकती है। राज्य शक्ति की प्रभुता प्राय मनुष्य को घमंडी महत्वाकांक्षी तथा स्वेच्छाचारी बना डालती है। व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के सदस्य यद्यपि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद वे निरंकुशता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वे भावावेश और जोशीले भाषणों के प्रभाव में बहकर अनुत्तरदायी और स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना कर नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। लीकॉक ने ठीक ही लिखा है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका निरंकुश तथा अनुत्तरदायी होती है और भावावेश तथा भाषा के प्रभाव में बह जाती है। जेएस मिल ने लिखा है कि दूसरे सदन के अभाव में एक सदन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो जाता है। अतः अविभाज्य सत्ता के दूषित प्रभाव को रोकने के लिए दूसरा सदन आवश्यक है। स्टोरी ने कहा है कि व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचने का यही उपाय है कि उसके कार्यों का विभाजन कर दिया जाए। स्वार्थ के विरुद्ध महत्वाकांक्षी के विरुद्ध दूसरे सदन का वैसा ही गठबंधन एवं प्रभुत्व खड़ा कर दिया जाए। तीसरा, कानून निर्माण में जल्दबाजी और उतावलेपन को रोककर उन पर सुधारात्मक प्रभाव डालती है। चूंकि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहते हैं, अतः वे जनता की क्षणिक भावनाओं या आवेशों से प्रभावित होकर कानून निर्माण में अत्यधिक जल्दबाजी करते हैं। परिणामतः एक पक्षीय और तर्कहीन कानूनों के निर्माण की होने की आशंका रहती है। इसके विपरीत जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहां दूसरे सदन में नियमांकित सदन द्वारा बनाए गए विधेयकों पर विवेकपूर्ण विचार कर उसकी त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है। लेखिका का कथन है कि नियंत्रण करने, संशोधन करने तथा रुकावट में लगाने में जो काम द्वितीय सदन करता है, उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। यह कानून पर सुधारात्मक, रोकात्मक तथा क्रमबद्ध प्रभाव डालती है। तीसरा, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए व्यक्तित्व स्वतंत्रता की रक्षा अनिवार्य है। इस हेतु यह आवश्यक है कि संप्रभु का केंद्रीयकरण किसी एक अंग या सभा के हाथ में नहीं हो पाए। इसी उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि व्यवस्थापिकों के अंतर्गत एक सदन के हाथों में शक्ति को केंद्रित होने से बचाने के लिए द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई जाए। मेडिसिन ने बताया था कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जिसमें मनुष्य के ऊपर शासन करेंगे, तो हमारी कठिनाई यह है कि क्यों ना हम पहले ऐसे उपाय निकालें जिनसे सरकार शासितों के ऊपर नियंत्रण रखे, या पहले ऐसा उपाय खोजें जिससे शासन स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रखे। चौथा, कार्य संचालन में योगदान। आज प्रजातांत्रिक युग में राज्य के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। व्यवस्थापिका के निम्न सदनों के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें अकेले नहीं संभाला जा सकता। इसके अलावा इसके सदस्य बराबर बदलते रहते हैं और शासन की जटिलता से परिचित होने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। इसके विपरीत उच्च सदन एक स्थायी सभा होती है, उसमें अनुभवी और योग्य व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। अतः प्रशासन के कार्यों के संचालन में निम्न सदन को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पांचवा, सभी विशिष्ट वर्गों के हितों और स्वार्थों का प्रतिनिधित्व। निम्न सदनों के प्रतिनिधि केवल बहुमत के प्रतिनिधि हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि चुनाव में पीछे छूट जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुमत से अनुभवी और योग्य व्यक्ति निर्वाचन के झमेले में पड़ने की वजह से प्रतिनिधि नहीं होना चाहता। इन त्रुटियों की पूर्ति उच्च सदन द्वारा होती है, जो इस क्षेत्र में अपने को बड़ा उपयोगी सिद्ध करता है। इससे देश के अनुभव भी योग्य, कुशल, बुद्धिमान व्यक्तियों को मनोनीत कर दिया जाता है। उच्च सदन ज्ञान, बुद्धि, परंपरा और राजनीतिक अनुभव के कोष होते हैं, क्योंकि उनमें प्राय बुद्धिमान और अनुभवी राजनीतिज्ञों को प्राथमिकता दी जाती है। जेएस मिल ने कहा है कि यदि सदन जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, तो उच्च सदन राजनीतिज्ञों और कलाकारों का सदन होता है। छठवां, पुनरावलोकन का कार्य। बेजहार्ट ने कहा है कि उच्च सदन विधेयकों का पुनरावलोकन करता है। अतः निम्न सदन द्वारा जो विधेयक पारित होकर आता है, उसमें बहुत सी त्रुटियों की गुंजाइश रह जाती हैं। उच्च सदन द्वारा उन्हें देखकर दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यह निम्न सदन के आए विधेयकों को शीघ्रता से पास नहीं करता, सौंदर्य पैदा करने का पर्याप्त असर मिल जाता है और विधेयक के संबंध में लोकमत का अनुमान लग जाता है। अतः इस अर्थ में दूसरा सदन बड़ा उपयोगी माना जाएगा। बलनसली ने ठीक ही लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि दो आँखों से चार आँखें अच्छी होती हैं। सातवां, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक प्रणाली का होना आवश्यक है। संघ शासन में अनिवार्यतः दो तत्वों का प्रतिनिधित्व होता है, एक जनता का और दूसरा संघीभूत इकाइयों का। अतः जनता के प्रतिनिधि के लिए निम्न या प्रथम सदन तथा संघीभूत इकाइयों के लिए उच्च या द्वितीय सदन की व्यवस्था की जाती है। उदाहरणतः अमेरिका, भारत आदि संघ राज्यों में द्वितीय सदन राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोफेसर गैटन ने लिखा है कि दो भवनों के रहने से विचार विमर्श में सतर्कता एवं सुंदर संतुलन और अधिक सावधानी से विश्लेषित एवं संग्रहित व्यवस्थापन की प्राप्ति होती है। द्विसदनात्मक पद्धति के दोष और एक सदनात्मक पद्धति के गुण। उपयुक्त गुणों के बावजूद द्विसदनात्मक प्रणाली पूर्णतः दोष मुक्त नहीं कही जा सकती। अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से आलोचना की है। उन्होंने द्वितीय सदन को अनुपयोगी तथा उद्देश्यहीन बतलाया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ठीक ही लिखा है कि द्वितीय सदन व्यवस्था ठीक वैसी है जैसी कि किसी गाड़ी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मुंह करके दो घोड़े लगा दिए जाते हैं और वे विपरीत दिशाओं में गाड़ी को खींचे। अब्बे सीएच एक ने एक बार कहा था द्वितीय सदन की क्या आवश्यकता है। यदि वह प्रथम सदन के साथ सहमत होता है तो उसका कोई उपयोग नहीं, और यदि वह सहमत नहीं होता तो वह केवल कोई शैतानी ही करेगा। दोनों सदनों के संघर्ष होगा और नतीजा यह होगा कि निष्क्रियता में जनमत का कोई जोड़ नहीं रह जाएगा। बेंथम ने कहा है कि द्वितीय सदन प्रथम से सहमत है तो यह निरर्थक है, और यदि असहमत है तो अहितकर। पहला, यह प्रणाली संप्रभुता की धारणा के विपरीत है। प्रजातंत्र में सार्वभौमिकता जनता में निवास करती है। इस संप्रभुता की अभिव्यक्ति जनता की इच्छा होती है, जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका द्वारा होती है। यह संप्रभु इच्छा अखंड या अविभाजित होती है, इसलिए इसके प्रतिनिधित्व के लिए केवल एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं। अम्बेसियर के शब्दों में किसी भी विषय पर एक ही लोकमत होता है, उसका दो स्थलों पर प्रतिनिधि होना एक राजनीतिक असंभव है, अतः द्वितीय सदन आवश्यक है। दूसरा, उत्तरदायित्व का विभाजन। जिस साधनात्मक पद्धति में चूंकि उत्तरदायित्व एवं शक्ति विभाजित रहती है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि व्यवस्थापिका की इच्छा क्या है और किसी भी कार्य के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है। तीसरा, सर्वसाधारण हितों के प्रतिकूल। इसमें किसी भी वर्ग के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता, अंतर्गत व सार्वजनिक हित को क्षति पहुंचती है। इस प्रणाली का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि इसकी स्थापना धनी वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए हुई। उदाहरणतः अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट संपितवान एवं पूंजीपति वर्ग, और इंग्लैंड में लॉर्ड सभा प्रतिक्रियावादियों का घर है और धनवान वर्ग की संरक्षिका। सच पूछा जाए तो उच्च सदन की पूंजीवादी वर्गों से प्रगतिशील कार्य में बाधा डालने का सफल उपादान माना गया है। चौथा, यह पद्धति भीषण अपव्यय का साधन है। प्रोफेसर लॉस्की ने लिखा है कि आधुनिक राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति एक सदनीय व्यवस्थापिका में ही हो सकती है, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्थापिका में काम की पुनरावृत्ति होती है, समय नष्ट होता है और राष्ट्रीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ता है। लॉस्की ने इस कथन में काफी सत्यता है। पांचवा, गत्य विरोध की संभावना। द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बराबर रहती है। इसका प्रमुख कारण दोनों सदनों के स्वरूप और संगठन में विभिन्नता है। द्वितीय सदन रूढ़िवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों का अड्डा बन जाता है, जो प्रथम सदन के प्रगतिशील विधेयकों का आवश्यक रूप से विरोध करता है। छवां, कानून निर्माण के लिए दो सदन आवश्यक नहीं। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में केवल जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, जो किसी भी कानून को क्षणिक भावावेश और उतावलेपन में पास कर देते हैं। एक सदन के इसी उतावलेपन एवं जल्दबाजी को रोकने के लिए द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। इससे अच्छे और उपयोगी कानूनों का निर्माण होता है, लेकिन यह विचार भ्रामक है। आज प्रथम सदन के उतावलेपन पर जल्दबाजी का आरोप लगाना गलत है। प्रोफेसर लॉस्की का कथन है कि कम से कम इस आधार पर दूसरे सदन का समर्थन तो नहीं किया जा सकता। आज किसी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए पहले सदन में उस पर लंबे अरसे तक विचार विमर्श ही होता है, समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित कर उस पर लोकमत जान लिया जाता है। आज सदन का किसी भी विधेयक की बड़ी सतर्कता से कानून का रूप देता है। इसके अलावा आधुनिक युग में प्रथम सदन के अविवेकपूर्ण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दल, प्रेस, रेडियो, सभा संस्थाएं, आंदोलन, लोकमत, न्यायालय आदि शक्तिशाली संस्थाएं हैं। सातवां, द्वितीय सदन कानून में कोई आवश्यक संशोधन भी नहीं करता। द्विसदनात्मक व्यवस्था के समर्थकों का तर्क है कि दूसरा सदन पहले द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन और आवश्यक सुधार पेश नहीं करता, लेकिन ऐसा सोचना भी निरर्थक है। दल प्रथा के कारण भी सदस्य दल के निर्णय के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा सदन में एक ही दल का बहुमत हो तो प्रथम सदन के बहुमत द्वारा पास किए गए विधेयक को दूसरा सदन संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकता। आठवां, संघात्मक शासन के लिए भी दूसरा सदन आवश्यक नहीं। आज के युग में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अल्पसंख्यकों तथा संघीभूत इकाइयों के अधिकारों की रक्षा दूसरे सदन से नहीं बल्कि वैधानिक संरक्षकों एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा हो सकता है। अतः संघीय शासन व्यवस्था में भी दूसरे सदन का अस्तित्व आवश्यक जान पड़ता है। नौवां, संगठन संबंधी अनिश्चितता। जिस सदन का संगठन संबंधी सिद्धांत सर्वमान्य तथा निश्चित नहीं है, विभिन्न देशों में इसका संगठन विभिन्न परंपराओं तथा सिद्धांतों पर किया है। प्राय सभी देशों में इसका संगठन अप्रजातांत्रिक है। उदाहरणतः इंग्लैंड के दूसरे सदन लॉर्ड सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव वंश परंपरा या उत्तराधिकार के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पद्धति में यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि दूसरे सदन के जिम्मे कितना अधिकार दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहना सरल हो जाता है कि वर्तमान युग में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आवश्यक नहीं। यह सही है कि 19वीं शताब्दी में इसे प्रबल समर्थन प्राप्त था, लेकिन 20वीं शताब्दी में इस प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन अधिक मजबूत और गंभीरतः होता जा रहा है। हाल में जितने भी देशों ने संविधान को अपनाया, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जगह एक सदनीय प्रणाली को ही स्थान दिया। इसके अतिरिक्त जहाँ कभी भी यह प्रणाली प्रचलित है, वहाँ उसे निचले सदन की अपेक्षा अत्यंत कम अधिकार प्राप्त है और दिन प्रतिदिन शक्तिहीन होता जा रहा है। इस बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य का युग द्विसदनात्मक प्रणाली के पक्ष में नहीं। गैटेल का कथन है कि भविष्य एक सदनीय की प्रणाली का ही साथ देगा और दो सदनों की प्रणाली तो राजनीतिक विकास की केवल एक अस्थायी दशा है। फिर भी यह कहना कठिन हो जाता है कि द्विसदनात्मक प्रणाली अच्छी है या बुरी, क्योंकि इसकी अच्छाई या बुराई किसी परिस्थिति, परंपरा और जनता के विशिष्ट दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उदाहरणतः अमेरिका की सीनेट वहाँ की शासन व्यवस्था का एक प्रबल स्तंभ मानी जाती है। दूसरी ओर यदि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देशों में शासन प्रणाली से द्वितीय सदन को निकाल दिया जाए तो किसी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं। अतः द्विसदनात्मक प्रणाली की उपयोगिता किसी देश विदेश की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।